Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. کل ہم نئے آیات کو پڑھنا شروع کر چکے تھے، سورہ انعام کی آیات نمبر 74 سے لے کے 81 تک، جو گروپ ہے معارف القرآن کے اندر آیات کا، گروپ بائی گروپ یہ ترجمہ اور پھر خلاصہ تفسیر اور پھر معارف مسائل بیان کرتے ہیں. تو اس گروپ کا ترجمہ ہم نے شروع کر دیا تھا، اور یہ ہم نے اس کو ایک طرح کا ایک ٹائٹل دیا تھا، ایک لیبل دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے جو پیچھے آیات تھیں تو ان میں ہمیں ایک سے زیادہ مرتبہ حکم فرمایا، تلقین فرمائی کہ جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں تو ان کو تم نصیحت کرتے رہا کرو. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو یوز کرتے ہوئے ان کو تم نصیحت کرتے رہا کرو. یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. ٹھیک ہے، وذکر بھی، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارے اوپر ان کے گناہوں کا وبال تو نہیں آئے گا، تمہارے اوپر تو تمہارے اپنے گناہوں کا ہی وبال آئے گا، کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. ولا تزرو وازرت وزرا اخرا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے. جو جس کا اپنا مسئلہ ہوگا وہ اسی کا حساب دے گا. تو تمہارے اوپر ان کے گناہوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے کوئی، لیکن تمہارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ذکرہ، ذکرہ کی ذمہ داری ہے، نصیحت کرنے کی ذمہ داری. تو پھر ہم نے بات کری تھی کہ اب ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ماضی کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا خصوصاً جو یہ والا واقعہ ہے، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے والا واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں شامل ہے، اور بھی ہیں واقعات ہیں نا، لوط علیہ السلام کے ساتھ انٹریکشن، یا جو ہے وہ اور بھی واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، لیکن یہاں پر کون سا والا واقعہ بیان کیا؟ ایگزیکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا پریویس ڈسکشن. ٹھیک ہے، وذکر بھی اور ذکرہ، تمہارے اوپر ذکرہ کی ذمہ داری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی کیس سٹڈی پیش کری یہاں پر، کیس سٹڈی. یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے جو ہے نا وہ حقیقت کو سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، انہوں نے پھر آگے اس کو پریزنٹ کیا. ٹھیک ہے، تو اپنے ابو سے بات شروع کری، جو سب سے قریبی باپ جو ہوتا ہے، جس کی یعنی اتنی اہمیت ہوتی ہے اور اتنا قرب ہوتا ہے ایک بیٹے کی زندگی کے اندر، کہ اگر وہ بلکہ بیٹی کی زندگی کے اندر بھی، دونوں میں باپ کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ہماری دین کے شریعت نے، یعنی شریعت نے باپ کے مر جانے پر بیٹے کو اور بیٹی کو یتیم کا درجہ دیا. یتیم، کہ یہ یتیم ہو گیا، اب باپ چلا گیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ ماں چلی گئی تو بھی بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ کیا ہے کہ پرووائڈر جو ہے نا، پرووائڈر، ٹھیک ہے، وہ باپ کو بنایا کہ باپ نے جو ہے وہ کمانا ہے، باپ نے مشقت برداشت کرنی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو فتشقیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ بھائی غلطی تو اماں ابا دونوں نے کری تھی، ابراہیم، وہ آدم اور حوا دونوں نے غلطی کری تھی. ٹھیک ہے، اور شیطان کی بات دونوں نے مانی تھی، आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों ने शैतान की बात मानी थी और इसके नतीजे में दोनों को सजा मिली थी कि दोनों को जो है वो जन्नत से अल्लाह ताला ने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इब्राहिम वो आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि फतश का कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे अगर तुमने शैतान की बात मान ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों का दुश्मन है, वो तुम दोनों को जो है वो जन्नत से निकलवा देगा। फिर क्या फरमाया, तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे ए आदम, सिर्फ तुम मुशक्कत में पड़ोगे, बेगम साहिबा मुशक्कत में नहीं पड़ेंगी। यहां पे मुशक्कत से मुराद बाहर की मुशक्कत, बाहर की तकलीफ, बाहर के धक्के खाने, ठीक है, रोटी कमानी, उसके लिए लोगों की जो है वो खिदमत करनी, या जो है वो गर्मी के अंदर जो है वो ड्राइव करनी, या जो है वो पैदल चलना, या जो है वो पत्थर उठाना, या जो है वो तामीरात करना, या जो भी करना, ये सारे काम आदम तुमने अकेले करना है, बेगम साहिबा घर में रहेंगी, ठीक है, बेगम साहिबा को तुमने प्रोवाइड करना है। और जो बच्चे होंगे वो भी, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो घर में ही रहते हैं ना, ठीक है, तो छोटे बच्चों को भी प्रोवाइड जो है वो अब्बू हुजूर ने करना है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर हमें बतला दिया और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के जरिए से हमें बतला दिया। हमने शैतान की बात मान करके इसको पलट दिया, इसको खराब कर दिया, उसकी हम सजा दुनिया के अंदर ही भुगत रहे हैं, तो आखिरत में तो बाद में भुगतेंगे। अल्लाह ना करे कि हमें भुगतना पड़े, अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमा दे, तो फिर नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में तो अभी इसी वक्त हम भुगत रहे हैं। हमने अल्लाह के बनाए हुए निजाम को उलट उलट करके अपनी जिंदगी में दूसरा निजाम बना दिया। तो कहने का मकसद ये है कि बाप इज द प्रोवाइडर, ठीक है, बाप को अल्लाह ताला ने वो वाला काम लगाया जो अल्लाह ताला करता, तो अल्लाह ही है, रिस्क तो अल्लाह ही देता है, लेकिन बाप के वास्ते से पहुंचाता है, ठीक है। तो सबसे करीबी जो है ना और सबसे अहम शख्सियत औलाद की जिंदगी में कौन बनती है, वो बाप की बनती है। आजकल तो फेमिनिज्म का दौर दौरा है ना, तो इस वजह से ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं मदर्स डे के अंदर कि जी माँ जो है वो गोद में लेकर के बैठी हुई है बच्चे को, और माँ जो है वो बच्चे की सारी निगहदाश्त कर रही है, माँ जो है बच्चे के लिए जो है वो मोहब्बत है और ये है वो है, ठीक है, माँ बैठी हुई है, अब्बू किधर गए, अब्बू किधर गए, तो अब्बू को दिखाते ही नहीं है उसके अंदर। तो किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई, इस तस्वीर को उन्होंने एक्सपैंड किया और ये दिखाया है कि माँ जो बैठी हुई है ना, तो वो जिस जमीन पे बैठी हुई है ना, ठीक है, उस जमीन को अब्बू उठाए हुए हैं अपने ऊपर, ठीक है, जिस चीज के ऊपर माँ बैठी हुई है बच्चे को गोद में लेकर के, उस चीज को अपने कंधों के ऊपर कौन उठाए हुए है, अब्बू हुजूर उठाए हुए, अब्बू हुजूर उठाए हुए, ठीक है ना। और यही असल और सही और खैर वाला निजाम यही है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है। जाहिर है शैतान जो है वो अल्लाह के खिलाफ, शैतान अल्लाह के निजाम के खिलाफ, तो वो अल्लाह के निजाम को फिर खराब करता है, या तो उसको उलटने की कोशिश करता है, अगर उलट नहीं सकता तो कम से कम उसको उसमें से एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं उनको छुपाने की कोशिश करता है। तो फिर घर के अंदर से अब्बू को छुपा दिया, अब्बू को छुपा दिया, ये अब्बू के बगैर ही घर चल रहा है माशाल्लाह। सिंगल सिंगल मदर्स होम, जैसे अमेरिका यूरोप के अंदर ज्यादातर अब जो है वो सिंगल मदर्स, क्योंकि अब अब्बू ने तो बच्चा पैदा नहीं करा ना, बच्चा तो अम्मा के थ्रू ही आएगा, इस वजह से सिंगल फादर्स होम जो हैं वो कम होते हैं जिनमें मदर छोड़ के भाग जाती हैं। ऐसी भी बहुत है जिसमें मदर छोड़ के भाग, अब तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात सुनने को मिल जाते हैं, माँ बच्चों को और शौहर को छोड़ के भाग गई, राइट, अब तो ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे वाकयात मिलते हैं, लेकिन अमेरिका में तो जाहिर है और भी ज्यादा, यूरोप के अंदर तो और भी ज्यादा। तो फादर सिंगल फादर्स होम्स भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर क्या सिंगल मदर्स होम जिसमें कोई फादर नहीं है, पता ही नहीं फादर कौन है भाई, फादर है होते ही नहीं है। खैर ले अभी ही तो अल्लाह ताला ने यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत जो बतलाई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत शुरू करी किससे, अपने अब्बू से, क्योंकि अब्बू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हाउस होल्ड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से मुराद ही इज द प्रोवाइडर, ही इज द यानी सेफ्टी भी प्रोवाइड करना, खाना पीना भी प्रोवाइड करना, दूसरी लग्जरीज भी प्रोवाइड करना, कपड़े लत्ता भी प्रोवाइड करना, ठीक है, अम्मी ने तो कार्ड इस्तेमाल करके ऑर्डर डालना होता है, शॉपिंग करनी होती है ना अब्बा के पैसे के ऊपर, अल्लाह का निजाम है, अम्मी का कोई कसूर नहीं कह रहे हम कि अम्मी का कसूर है, नहीं, अब अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, अम्मी का हक है ये पूरा का पूरा कि वो तो अब्बा के कार्ड से शॉपिंग करें, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत अब्बू से शुरू करी। देखिए यहां पे उम्मी ही भी तो हो सकता था कि उन्होंने अपनी अम्मी से बात करी, उन्होंने अपनी खाले से बात करी, उन्होंने अपनी बहन से बात करी, लेकिन नहीं, ले अभी ही अब्बू से बात करी। ठीक है, तो वो हमने थोड़ी देर में आपको प्रूव करने की कोशिश करी क्यों अब्बू से बात करी उन्होंने। अब्बू वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हियर। ठीक है, यहाँ पे कोई मैस फेमिनिज्म के खिलाफ वाली बातें कोई नहीं हो रही। ये हम नहीं कह रहे कि अम्मी की अहमियत नहीं, अब्बू की अहमियत है, अब्बू की ज्यादा है, अम्मी की कम है, ये सारी तमाशे हम नहीं कर रहे। हम आपको एक चीज बता रहे हैं जो कि दीन से सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी बात जो चल रही थी, उन्होंने बुतों के बारे में तो स्ट्रेट अवे कह दिया ना कि नहीं, ये तो बेवकूफ, ये तो बिल्कुल ही फिर गोलालिम मुबीन। ये बुतों को जो मैं देखता हूँ ना, तुम लोग बुतों की परस्तिश कर रहे हो, ये तो तुम खुली गुमराही के। लेकिन उसके बाद जब चांद सूरज सितारे की बात आई, क्योंकि ये लोग उनकी भी परस्तिश करते थे, उनको भी अपना खुदा कहते थे, वहां पर फिर पूरा का पूरा ड्रामा सेट किया, पूरा का पूरा स्टेज सेट किया। ऐसे बोल रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ला उहिब्बुल आफिलीन। ठीक है, तो ये सब करते करते हम आगे बढ़े थे और आयत नंबर 80 के ऊपर पहुंचे थे कि जब उन्होंने अपनी कौम से ये सारी बातें कह दी ना कि भाई मैं तुम्हारी तरह शिर्क नहीं करता, मैं इस तरह की बेवकूफी की बातें, ऑक्सीमोरॉन किस्म का मेरा एटीट्यूड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि एक चीज को मानो भी एक चीज को नहीं भी मानो, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्शन, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करता। जब उन्होंने ये सब कह दिया ना, तो फिर क्या हुआ, वहाजहु कौमुहु। कल क्या कहा था, हाजहु कौमुहु का हम क्या मतलब समझते हैं, हम क्या मतलब समझते हैं कि जब उन्होंने अच्छी बात करी, जब उन्होंने सच बात करी, जब उन्होंने दलील के साथ बात करी, तो सबने आके उनको गले लगा लिया होगा। तो हाथ जहू का मतलब गले लगाना होता है शायद, हाथ जहू का मतलब होता है लड्डू खिलाना, हाथ जहू का मतलब होता है हार पहनाना, नहीं, हाथ जहू का मतलब हार पहनाना, गले लगाना, लड्डू खिलाना बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। ठीक है, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया, आर्ग्यूमेंटेशन शुरू कर दी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, काला अतुहाज्जूनी फिल्लाहि वकद हदानी, कि तुम मुझसे झगड़ते हो अल्लाह ताला के मामले में, अल्लाह ताला के मामले में जिसको कि तुम्हारी फितरत भी जानती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा। ठीक है, ये भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमने इंसान को फितरत के ऊपर पैदा किया है, जो कि अपने परवरदिगार को जानती है कि हाँ एक है, समवन इज आउट देयर हु क्रिएटेड मी एंड हु इज देयर फॉर मी। ठीक है, अब जाहिर है आंख खराब हो जाती है तो नजर नहीं आता, उसी तरह रूहानी आंख खराब होती है तो फिर वो समवन भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन है तो ना वो, आपको नजर नहीं आ रहा इसका मतलब ये कि थोड़ी है कि वो है नहीं। मुझे यहाँ पे जो है वो अपने स्टडी डेस्क पे बैठा हुआ, मुझे जो है वो बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही, मैं कहूँ कि नहीं मुझे नजर नहीं आ रही, इस वजह से वो है ही नहीं। भाई आपको नजर नहीं आ रही इसके वजह, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं। ठीक है, किसी और से पूछो जो उसको नजर आ रही है, वो बता देगा कि आप ही मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो तुम्हें भी नजर आता है कि अल्लाह तो एक ही है, सस्टेनर और ये सब तो एक ही है, और अल्लाह ताला ने फिर मुझे हिदायत दी, क्या मतलब कि मुझे फिर इसको मानने की भी तौफीक अता फरमा दी। ठीक है, कि अल्लाह एक ही है, कोई उसके पार्टनर्स वार्टनर्स नहीं है, ये जो चांद सूरज सितारे हैं ना, ये कोई नहीं है, ये कोई खुदा नहीं है ये। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, क्योंकि हिदायत इज अ गुड थिंग, हिदायत जो है वो अच्छी चीज है, फायदेमंद चीज है। तो जो जिससे मोहब्बत करता है, फायदेमंद चीज का क्रेडिट उसको दे देता है। ठीक है, फायदेमंद चीज का क्रेडिट, अच्छी चीज का क्रेडिट वो अपने महबूब को दे देता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे। ठीक है, जो भी जिससे भी मोहब्बत करता है वो हमेशा अच्छी चीज का क्रेडिट अपने महबूब को ही देता है। तो इन्होंने क्रेडिट अल्लाह को दिया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। ठीक है, ये नहीं कि खुद जो है वो सोए हुए थे और खुद जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे थे और बस अल्लाह ने एकदम से हिदायत दे दी, नहीं, अपना काम ही पूरा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया कि देखो मैंने अच्छे काम किए थे, मैंने जो है वो इतनी अकलमंदी दिखाई थी और इतनी जो है वो अफलातूनी दिखाई थी, इस वजह से देखो मैं ठीक रास्ते पर पहुंच गया हूँ, ये तो अपने ऊपर क्रेडिट लेना हुआ ना, अपना यानी अपने मुंह में मिट्ठू जिसको उर्दू में कहते हैं। अपनी तारीफें करना, और ये तो अच्छी बात नहीं होती। इन्होंने अपनी तारीफें नहीं करी बल्कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। ठीक है, तो काल अतुहाज्जुनी फिल्लाही, तुम मुझसे झगड़ते हो अल्लाह के मामले में, हालांकि अल्लाह ताला ने जो है मुझे हिदायत दी है और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूं उस हकीकत को जिसको तुम भी जानते हो, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, वला अखाफ मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैया, और मैं नहीं डरता उन चीजों से जिनको कि तुम अल्लाह ताला के साथ पार्टनर बनाते हो, कि अल्लाह ताला नऊज बिल्ला गोया कि कोई कोई इनकम, यानी एक एक कमजोर चीज है, ही नीड सम पार्टनर्स, ही नीड सम हेल्पर्स, तुम हेल्पर्स बनाते हो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला डज नॉट नीड एनी हेल्पर्स, डज नॉट नीड एनी पार्टनर्स। ठीक है, तो तुम कहते हो कि अल्लाह के जो पार्टनर तुमने बना के अपने दिमाग में बनाए हुए हैं तो मैं उनसे डरूं, है कि वो मुझे कुछ कर देंगे? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। इल्ला अय्यशा रब्बी शैया, इल्ला ये सिवाय इसके कि अल्लाह ताला खुद चाहे कि मुझे कुछ तकलीफ पहुंचे तो फिर वो पहुंच सकती है। ये कोई थोड़ी कि मैं अगर खलीलुल्लाह हूं, मैं अगर अल्लाह का नबी हूं तो मुझे कोई तकलीफ ही पहुंच सकती, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी को भी तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह के खलील को भी पहुंचती है, अल्लाह के वली को भी पहुंचती है, एक आम आदमी को भी पहुंचती है। जब वो जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसका काम खराब हो जाता है, खराब से मुराद उसकी कोई रुकावट आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई तकलीफ पहुंच जाती है। नबियों को भी तकलीफें पहुंची, हत्ता के ऐसे नबी भी थे जिनको आरे से काट दिया गया, राइट? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, उनको आरे से चीर दिया गया, बिल्कुल जिसको वो एक्स, जिस एक्स भी क्या कहते हैं, सौ, राइट, उससे चीर दिया। यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, और भी कितने अंबिया को बनी इसराइल ने कत्ल किया। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसी कैसी थूक फेंके गए, और ऊंट की ओजड़ी ला करके आप के पीठ पर डाल दी गई, और नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे उनकी तो बोटियां बोटियां भी जो है वो काटी गई, राइट, हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला, और दूसरे सहाबा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला, नबी अलैहिस्सलाम के चचा भी और मोहब्बत करने वाले सबसे करीबी दोस्तों में से भी थे और खालिस मोमिन थे, लेकिन उनका जो है वो चाक किया गया और निकाल निकाल करके जो है वो चबाया गया उनके बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, तो ये नेकी का ये थोड़ी मतलब होता है कि ये कोई आपके गोया कि आप दुनिया में आपको वाकई हकीकतन जन्नत मिल जाएगी, नहीं, जन्नत कोई नहीं मिलती, अलबत्ता जन्नत के मजे जरूर मिलते हैं। क्या मतलब? आपका दिल मुतमईन रहता है, आपके साथ तकलीफ आती है, आपका कोई काम खराब हो जाता है, आपका कोई काम अटक जाता है, आप फ्रस्ट्रेट होकर के गंदी गंदी बुरी बुरी बातें करना नहीं शुरू हो जाते, आप गालियां देना नहीं शुरू हो जाते, आप जो है वो बाल नोचना नहीं शुरू हो जाते, ये नेकी की अलामत है। ठीक है, नेकी के ऊपर जमे रहते हैं, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ नेकी पे जमे रहते हैं, बुराई का रास्ता नहीं अपनाते हैं, बेशक काम अटक जाए, बेशक काम खराब हो जाए, वो तो होता ही है सबके साथ। तो इन्होंने भी यही कहा कि इल्ला ये कि अल्लाह ताला मेरा रब खुद चाहे कि मुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो फिर तो पहुंचेगी। ठीक है, क्या इन्होंने लिखा, एक मैसेज आया हुआ है खवातीन की साइड पे कि आई वॉन्ट टू एस्क, अगर हमें हिदायत मिले तो हमें शुक्र अदा करके जब दूसरों को इस रास्ते पे लाने की कोशिश करें वो ना आए, दैट मीन्स वी आर ए फेलियर, हमको सही हिदायत नहीं मिली, हाउ वी गॉट टू नो कि हमको हिदायत मिल गई, हाउ वी गॉट टू नो कि हमको हिदायत मिल गई। ठीक है, इसका जवाब जो है वो अगर हम स्टूडेंट से पूछें कि हाउ डू वी नो कि हमको हिदायत मिल गई। ठीक है, जहां तक आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि अगर दूसरे हमारी बात नहीं माने तो इसका मतलब ये है कि हम फेलियर हो गए, तो व्हाट अबाउट नबी अलैहिस्सलाम? भाई देखा करें ना अपने नबी अलैहिस्सलाम को, इतना तो आप तो हम हमें हक देना चाहिए कि हम आप सल्लम की तरफ नजर करें ना। ठीक है, तो देखें नबी अलैहिस्सलाम ने, और आप कल की क्लास में शायद नहीं थी, कल तो ये बहुत ज्यादा बात हुई थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने बात पहुंचाई अपने खानदान वालों को तो आगे से क्या जवाब मिला, राइट? अबू लहब ने क्या जवाब दिया, तब्बन लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाए, यानी तुम बर्बाद हो जाओ, नाउज बिल्ला, ऐसी बात है उसने कही। अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि तलाक दे दो नबी, इनकी मोहम्मद की दोनों बेटियों को तुम तलाक दे दो, और जो है वो उसकी बीवी जो है वो कैसी कैसी जो है वो तकलीफें पहुंचाती थी, राइट? वमरातु हम्मालत अल-हतब। और ये नहीं कि शुरू में नहीं माना बाद में मान लिया, बल्कि मरते दम तक नहीं माना। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम सलाम फेलियर कहलाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो किसी का बात ना मानना ये तो दाई यानी दावत देने वाले का फेलियर नहीं होता, ठीक है? वरना तो कितने नबी नाउज बिल्ला फिर वो फेलियर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सा जवाब है। लेकिन दूसरा सवाल जो इनका है ना, हाउ डू वी नो के वी के हमको हिदायत मिल गई, तो इसका जवाब जो है वो आप दें अगर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी ने जवाब दिया कि नसीहत करने वालों को हर हाल में फायदा होता है अगरचे कोई ना माने। ये तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन ये पहले वाले से जवाब था। हमारा काम कोशिश है हिदायत देना नहीं, हमारा काम बलाग और मुबीन करना है, ठीक है? तो हमारा काम कोशिश करना है, हिदायत तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, वो तो बिल्कुल सही है ना। लेकिन दूसरा सवाल जो है ना वो ये कि हाउ डू वी गेट टू नो कि हमको हिदायत मिल गई, यानी हमको सही हिदायत मिल गई या हमको नई हिदायत मिली, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका जवाब मर्दों की तरफ से शायद पढ़ते हैं। हिदायत मिलने का मतलब है कि नदामत हासिल हो जाए अपने गुनाहों पर और तौबा की तौफीक मिल जाए। तो ये एक अच्छा आपने थ्योरेटिकल जवाब दिया कि हिदायत मिल जाने का मतलब ये है, यानी जो आपने सवाल किया ना कि हाउ डू वी गेट टू नो कि हमें हिदायत मिल गई, तो इसका एक थ्योरेटिकल जवाब और बिल्कुल सही थ्योरेटिकल जवाब है कि हमें अपने गुनाहों पर नदामत हासिल हो जाए और तौबा की तौफीक मिले। तो ये एक अच्छा जवाब है, लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल आंसर नहीं है जो कि इनको समझ में आ सके, क्योंकि इसके ऊपर सवाल ही पैदा होता है ना कि हाउ डू यू नो कि कौन से गुनाह कर रही हूँ, कि मैंने मेरे गुनाह है क्या कि जिसके ऊपर मुझे नदामत मिल गई है, ठीक है? जी एग्जैक्टली ठीक है। तो दूसरा जवाब जो खवातीन की तरफ से आया है वो बिल्कुल सही जवाब है कि हिदायत हमें मिली है कि हमें नहीं मिली है, ये बिल्कुल ऐसे ही आपको पता चलेगा जैसे आपने मेकअप अच्छा किया है कि नहीं किया है, ये आपको पता चलता है। कैसे पता चलता है? आपको जो सवाल करने वाले जो हैं वो खुद जवाब देते हैं कि आपने मेकअप सही किया है, मेकअप गलत लगाया है, पता नहीं आपकी उम्र कितनी है, मेकअप आप लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं। लेकिन क्या जवाब है इसका कि आपने मेकअप सही लगाया है कि आपने मेकअप गलत लगाया है, या आपने चने कंघी सही करी है कि आपने कंघी गलत करी है, आपको क्या कैसे पता चलता है? ठीक है, मिरर से पता चलता है, मिरर से, एग्जैक्टली ठीक है, आईने से पता चलता है। बिल्कुल जिस तरीके से कंघी सही करी है कि गलत करी है ये आईने से पता चलता है, मेकअप सही लगाया है कि गलत लगाया है ये आईने से पता चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको हिदायत मिली है कि नहीं मिली है ये आईने से पता चलता है, लेकिन ये फिजिकल आईने से पता नहीं चलता कि बुरका अच्छा पहन लिया है तो इसका मतलब ये आईने में देख लिया कि हाँ मैंने बुरका ठीक पहन लिया इसका मतलब मुझे हिदायत मिल गई है। नहीं, फिजिकल आईना यहाँ पे मुराद नहीं है, बल्कि क्या है वो मेरा हदीस मुबारक के अल्फाज क्या है कि मोमिन मिरातुल मोमिनो मिरातुल मोमिन, के ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का आईना है। तो कोई ऐसा ईमान वाला आपकी जिंदगी में होना चाहिए या होनी चाहिए कि जो कि आपको आईना दिखा सके कि हाँ भाई हिदायत मिली भी है क्या, बस गुमान अपने बारे में करके बैठी हुई है कि वाकई इनको हिदायत मिल गई, या हिदायत मिल गई है काम सही समझ रही है सही कर रही है लेकिन शैतान मायूस कर रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हारी तो लोग ही बात नहीं मानते, इस वजह से तुम जो है वो हिदायत पर नहीं हो। नहीं, बल्कि कोई ऐसा इल्म वाला, कोई ऐसी मुत्तकी होनी चाहिए या होना चाहिए जो कि आपको सही तस्वीर दिखा सके कि नहीं ये आपको हिदायत मिल गई है, या अगर नहीं मिली तो आपको बता सके कि नहीं मिली, आप खामखा अपने बारे में खुश हो रही हैं, फ्री में खुश हो रही है अपने बारे में। तो मिरर, मिरर्स से पता चलता है। और जिनकी जिंदगी में मिरर कोई नहीं होता ना, वो फिर गुमान में रहते हैं कि हाँ मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और मुझे नदामत मिल गई, पता नहीं करी भी है कि नहीं करी है, हू नोस, ठीक है? एनीवे लिख लिया करें इन बातों को ना, बाद में दोबारा से उसको एक दफा देखेंगे ना तो फिर आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल जो हमारा दरस कुरान होता है तो उसके लिए तो फिर बाकायदा खवातीन जो हैं वो तकरार सेशंस के अंदर जुड़ती हैं, बच्चियां भी जो होती हैं वो भी अपने तकरार सेशन के अंदर इकट्ठी होती हैं, ऑनलाइन जूम के ऊपर इकट्ठी होती हैं और फिर वो तकरार करती हैं, रिपीट करती हैं इन दरस कुरान, और फिर बच्चियां और खवातीन दोनों बताती हैं कि उस वक्त जो बात समझ में आती है ना तकरार में, वो क्लास के दौरान समझ में नहीं आई होती, वो क्लास के दौरान नहीं समझ में आई होती। कितनी खवातीन का ये फीडबैक मिला है और बच्चियों का भी ये फीडबैक मिलता है, ठीक है? तो भाई अब रमजान मुबारक में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम तकरार सेशन का अलग टाइम रखें, क्योंकि इसमें रोजाना का ये दरस फरहान होता है और फिर उसके बाद रमजान की दूसरी भी मसरूफियात होती हैं, तरावी भी होती है, अफतार भी होता है, और भी काम करने होते हैं, तिलावतें भी करनी होती हैं, तो तकरार इज नॉट पॉसिबल। अब क्या करें भाई, अब बगैर समझे आगे बढ़ जाएं? ये जो हम सारे दरस कुरान 30 दिन तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वो बगैर समझे जो है फिर हम आगे बढ़ जाएंगे? ऐसे नहीं, बल्कि आप नोट्स बनाएं और जल्दी जल्दी एक नजर अपने नोट्स को देख लिया करें किसी वक्त भी, वो आपको फिर 5 से 10 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगे, तो वो आपकी अपनी तकरार हो जाएगी। और फिर हम खुद भी कोशिश करते हैं कि अगले दिन की जो क्लास हो उसके अंदर भी थोड़ी सी तकरार हो जाए, लेक्चर के दौरान ही तकरार हो जाए, क्योंकि मकसद तो बात को समझना है ना, मकसद टाइम पास करना तो नहीं है ना, खाली बस क्लास में लॉग इन करके खालियों जहन होकर बैठ गए और खालियों जहन होकर के निकल गए और कोई फायदा ही कोई नहीं हुआ, ये मकसद तो नहीं है ना। ठीक है, तो उन चीजों को लिख लिया करें और फिर एक नजर देख लिया करें अपने नोट्स पर। सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखने हैं, पूरे पूरे सेंटेंसेस जुमले नहीं लिख पाएंगी, लेकिन कीवर्ड्स लिखने, फिर उनको एक नजर देख करके सब सामने याद आ जाएगा, अल्लाह ताला याद करवा देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वसे रब्बी कुल्ल शयइन इल्मा, कि मेरा रब तो वसीय है, यानी उसने इहाता किया हुआ है मेरे रब ने कुल्ल शयइन हर चीज को, इल्मन इल्मन इहाता किया हुआ। क्या मतलब? ये नहीं कि अल्लाह ताला जो है वो अपने हाथ समेट करके, यानी हाथ फैला करके जो है वो चीजों के गिल बैठे हुए हैं, ठीक है, कि चीजें बीच में है अल्लाह ताला, नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला के हाथ चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं, अल्लाह ताला के हाथ या अल्लाह ताला का जिस्म फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। इल्मन यानी विद नॉलेज, अल्लाह ताला की नॉलेज ऐसी ऑल एनकम्पसिंग है कि कोई चीज अल्लाह ताला की नॉलेज से छुपी भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो रोशन हो, चाहे वो डार्क हो, चाहे वो जाहिर हो, चाहे वो अंदर किसी चीज के छुपी हुई हो, अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं। भाई पैदा भी तो अल्लाह ही ने करी ना, ये कि थोड़ी है कि किसी और ने पैदा करी थी, अब अल्लाह ताला ने किताबें पढ़ पढ़ करके या इल्म हासिल कर करके जो है वो नॉलेज हासिल कर लिए, तो हो सकता है कि कुछ पढ़ने में कमी रह गई हो। जैसे हम इल्म हासिल करते हैं ना, हम एक्वायर करते हैं इल्म किसी चीज के बारे में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, राइट, तो अब हमारी इल्म के अंदर कमी बेशी ऑफकोर्स मेक सेंस, आप 100% इन हासिल कर ही नहीं सकते, कितना कर लोगे भाई, कितनी किताबें पढ़ लोगे, कितने मैनुअल्स जो है वो कवर टू कवर तुम समझ लोगे, हमने क्रिएट ही नहीं किया ना किसी चीज को, अल्लाह ताला ने तो क्रिएट भी किया है, और क्रिएट करने के बाद अल्लाह ताला ने उसको किसी दूसरे को आउटसोर्स नहीं कर दिया कि नाउ यू गो एंड रन द शो, मैं तो अब बैठा हूं मुझे अब नहीं पता क्या हो रहा है उसके बाद। होता ना, आप कोई अपना मैन्युफैक्चर करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट किसी और के हवाले कर देते हैं, अब वो जाने और वो प्रोडक्ट जाने, वो अपना काम करता है, अब आपको पता ही नहीं इस प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, अल्लाह ताला ऐसे नहीं है। और जो ऐसा है, अगर हमने अपने दिमाग में अल्लाह को ऐसा समझा हुआ है तो वो अल्लाह नहीं है, वो फिर आपने अपना कुछ बनाया हुआ है, अपनी कोई तख्लीक बनाई हुई है, उसको आपने अल्लाह का नाम दे दिया है, बस वो अल्लाह है ही नहीं, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके सामने इबादत करते ही नहीं है, हम उसकी उसके सामने अपना सर झुकाते ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सर झुकाना तो क्या, हम अपने कवर भी नहीं झुकाएंगे उसके सामने इंशाअल्लाह, ठीक है, रुकू भी नहीं करेंगे उसके सामने, सजदा करना तो दूर की बात, हम उसके सामने रुकू भी नहीं करेंगे जो कि आउटसोर्स करके जो है ना वो दूसरों से अपना काम करवा, ठीक है। तो बस अरबी कुल्ला शयइन, मेरा रब तो हर चीज को इल्मी तौर पर इहाता किया हुआ है, अफला ततज़क्करून, क्या तुम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते? अल्लाह ने अकल फिट करके तुम्हारे सर के अंदर दी हुई है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये फैकल्टी जो है वो अल्लाह ताला ने डाल करके तुम्हें पैदा किया है, अनलेस के अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला किसी हिकमत की वजह से किसी को मेंटली डिसेबल्ड पैदा करें, वो हिकमत होती है, वजह होती है उसकी, कि किसी को मेंटली डिसेबल पैदा किया, वो अपनी अकल उसके अंदर है ही नहीं, उसको गैर आकिल भी कह देते हैं या उसको जो है वो बेअकल कह देते हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो हर बंदे का रूल तो ये है, बंदे के पास अकल है तो भाई इस्तेमाल करो ना इस अकल को। एक मिनट जरा, थोड़ा
Recording in progress.
अच्छा, किसी ने सवाल पूछा था जब हम ये आप लोगों से पूछ रहे थे हिदायत के बारे में, किसी ने सवाल पूछा था कि गेटिंग हेट फ्रॉम सोसाइटी कैन बी अ साइन ऑफ हिदाया, गेटिंग हेट फ्रॉम सोसाइटी कैन इट बी अ साइन ऑफ हिदाया? नो, एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, ये साइन ऑफ हिदायत नहीं है. जैसे आप डिटरमिन नहीं करते कि लोग क्योंकि आपको बुरा समझ रहे हैं इस वजह से आप जो है वो हिदायत पर है. ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वरना तो हर जो है ना वो उल्टी हरकत करने वाला बंदा जो है जिसको कि लोग नापसंद करें क्योंकि वो उल्टी हरकत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो कहेंगे अच्छा लोग मुझे नापसंद कर रहे हैं इस वजह से मैं यकीनन हिदायत पर होऊंगा. ठीक है, ये बेवकूफी की हरकतें जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं. ओहो अच्छा ठीक है. ठीक है, मर्दों में आवाज आ रही है ना इसलिए मेरा ये फोन है. जी ठीक है, तो क्लास रिज्यूम करते हैं कि असला तदद करूं. ठीक है, कि तुम अकल अल्लाह ताला ने दी है, तुम अपनी अकल को तुम खेलकूद में इस्तेमाल करते हो, अपनी अकल को तुम अपने तफरीहात में उल्टी सीधी शुगल मेले के अंदर अप्लाई यूज करते हो, हर जगह तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हो, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हो, रोकड़ा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हो, अपने जो है कपड़े लत्ते के लिए इस्तेमाल करते हो, अपनी हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हो. एक खुदाई रह गया जिसके लिए तुमने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करना. राइट, एक खुदा तुम्हारा जिसने तुम्हें बनाया, जो असल में तुम्हें खिला रहा है इन असबाब को इस्तेमाल करते हुए, उधर तुमने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी. वहां पे तुमने जो है ना वो बेअकली और बदअकली के साथ जो है वो बस गोइंग विद द फ्लो, या जो है वो बेवकूफी के आर्ग्यूमेंट्स, कोई तुमने होमवर्क नहीं करना वहां पे. अफला तत करूं, क्या तुम सोचते नहीं, ये इसका मफहूम है हमारे लिए. ठीक है, वह कैफ अखाफू, और कैसे मैं खौफ करूं, कैसे मैं खौफ करूं, क्यों मैं खौफ करूं. मा अशरक तुम, तुम्हारे शरीकों से, यानी तुमने जो अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाए हुए हैं, असल में वो अल्लाह के पार्टनर्स नहीं है बल्कि तुमने बनाए हुए हैं. वला तखाफूना अन्नकुम अशरक तुम बिल्लाही, हालांकि तुम्हारा हाल यह है कि तुम नहीं डरते इस बात से कि तुम अल्लाह के साथ पार्टनर ठहराए हुए हो लोगों चीजों को, तुम इस बात से डरते नहीं हो. मैं क्यों डरूं भाई, राइट, मैं क्यों डरूं, तुम तो डरते नहीं हो. मालम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, उन चीजों को तुमने अल्लाह के साथ पार्टनर बनाया हुआ है कि जिनके लिए तुम्हारे पास कोई सुल्तान नहीं नाजिल हुई, कोई दलील नहीं नाजिल हुई, तुम क्यों नहीं डरते हो. मैं क्यों डरूं जब तुम नहीं डरते हो. देखें इसको क्या कहते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट जैसा मनहूस गेम जो है पाकिस्तानियों की जान है, वो बिल्कुल भी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्रिकेट को बुरा भला कहना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परवाह नहीं है इसकी. ठीक है, तो क्रिकेट जैसा मनहूस जो खेल है जिसमें कोई फायदा नहीं है, जो दीन के हमारी जिंदगी के मकसद से बिल्कुल खिलाफ है तो वो ब्रिटिश का गेम, लेकिन और भी गेम्स जो है वो यूरोपियंस के बनाए हुए हैं जो कि हम भी खेलते हैं. फुटबॉल भी कोई पाकिस्तानियों को बनाए हुए गेम नहीं है, लेकिन फुटबॉल में फिर कुछ वर्जिश होती है, फिर कुछ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी होती है, क्रिकेट में तो वो भी नहीं होती है. ठीक है, आप जाने, आपका काम जाने, अल्लाह ही आपका आपसे हिसाब लेगा इसका कि क्या करते हो तुम अपनी जिंदगी में ना, तफरी करते हो, इसलिए तुम्हें पैदा किया था, तुम्हारे बच्चों को पैदा किया था. बहरहाल, लेकिन क्रिकेट क्योंकि गुनाह किया है माजी में, तो इस वजह से उसकी टर्म्स जो है वो दिमाग पे सवार रहती है. हमने भी बहुत गुनाह किया है क्रिकेट, अल्लाह ताला माफ करे हमारे इस गुनाह को. तो इस वजह से क्रिकेट के अंदर जो है ना वो एक होता है फ्रंट फुट पे खेलना और एक होता है बैक फुट पे खेलना. फ्रंट फुट पे खेलना ठीक है, यानी थोड़ा ऑफेंसिव, यानी आप जो है वो हर वक्त भीगी बिल्ली की तरह से जो है ना वो बैक फुट पे नहीं खेल रहे. ठीक है, सिर्फ डिफेंसिव नहीं हो रहे बल्कि आप आगे जा करके जो है ना वो अपना मौकफ पेश कर रहे हैं, अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो दलील के साथ पेश कर रहे हैं. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या कर रहे हैं कि उनके ऊपर, जिसको हम उर्दू में ये भी कहते हैं, चढ़ गए, उनके ऊपर चढ़ गए, बजाय इसके कि हर वक्त डिफेंसिव पे, हर वक्त भीगी बिल्ली के तरीके से. भीगी बिल्ली कौन बनता है, जिसके पास कोई केस ही स्ट्रांग नहीं होता, जिसका अपना केस वीक होता है ना. ठीक है, जिसको आगे शॉट मारना नहीं आता ना, तो वो फिर पीछे से डिफेंसिव खेल रहा होता है. लेकिन जिसका अपना केस स्ट्रांग होता है, वो अगले बंदे के ऊपर अच्छी तरीके से फिर आर्ग्यूमेंट के साथ, सही दलील के साथ आगे बात करता है. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कर रहे हैं, मैं क्यों डरूं, तुम तो डरते नहीं हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जाते हैं किसी की शादी में, राइट, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त या किसी जो है वो जानने वाले की शादी में जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है ना वो उन्होंने म्यूजिक चलाई हुई होती है, उन्होंने बेपर्दगी का निजाम रखा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो दीनदार हजरात होते हैं, हम जैसे दीनदार हजरात, ठीक है, हम वहां जाते हैं और म्यूजिक में ही जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं भाई म्यूजिक के अंदर? भाई अब कैसे मना करें, वो माइंड कर जाएंगे। अगर हमने उनको कहा कि म्यूजिक बंद कर दें आप, वो माइंड कर जाएंगे। भाई वो इस बात, वो आपका तो ख्याल करनी रहे, वो आपका तो ख्याल करनी, आपका ख्याल से, बल्कि वो भी इस दीन को मानते हैं, वो भी अच्छे खासे मुसलमान ही होते हैं, आपके जैसे ही मुसलमान होते हैं, वो भी हदीस का इनकार करने वाले हर कोई नहीं होता। आप तो हदीस के अंदर तो म्यूजिक के बिल्कुल सराहतन मौजूद है, म्यूजिक हराम है। तो वो तो ना आपका ख्याल कर रहे हैं, ना तो वो अल्लाह के नबी का ख्याल कर रहे हैं, ना तो वो दीन का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन आपको सारा का सारा ख्याल आया हुआ है कि हम उनको नहीं बोलेंगे म्यूजिक बंद करने के लिए, भाई माइंड कर जाएंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगी फिर ताल्लुक। वो क्या होता है, हमारा दीन तो कहते हैं ना सिला रहमी करना चाहिए, हमारा दीन तो कहता है कि रिश्तेदारों के साथ जुड़ के रहना चाहिए। अल्लाह के बंदे, हमारा दीन ये कोई थोड़ी कहता है कि अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज करके रिश्तेदारों से जोड़ो, ये को थोड़ी कहता है हमारा दीन कि तुम गुनाह करके जो है वो रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक जोड़ो, ये तो नहीं कहता है हमारा दीन। हम इतने भीगी बिल्ली क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि हम खुद गुनाहगार, हम खुद जो है ना वो पक्के नहीं होते अपने दीन के अंदर, हमारे खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमारा खुद यकीन नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर, इस वजह से चुप करके म्यूजिक के अंदर जाके बैठ जाते हैं। भाई जाना है, आए हम, देखो हम तुम्हारे खुशी में शरीक होने के लिए आए, लेकिन तुम अल्लाह उसके रसूल का लिहाज करो, तुम हमारा लिहाज करो, तुम म्यूजिक को बंद करो, वरना हम जा रहे हैं, हम तुम्हें तोहफा देंगे, हम तुम्हें मुबारकबाद दे दिया, हमने सलाम कर लिया, अब हम जा रहे हैं, भाई हम म्यूजिक में नहीं बैठेंगे, इस जहर के साथ हम यहाँ पे मौजूद नहीं रह सकते, हमें पता ही नहीं कि म्यूजिक जहर है, तो हम कैसे ये बात करें, इल्मी कभी हासिल नहीं किया कि म्यूजिक क्या होती है और कैसे जो है इंसान के ऊपर असर करती है, तो हम कैसे उनको बोले कि तो ये तुमने जहर जो स्टार्ट किया है ना, हम इस जहर के साथ अपने और अपने बच्चों को रूहानी तौर पर कत्ल नहीं करना चाहते, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करते, ऐसे नहीं करते, हम उन्हीं के सामने दबे दबे चले जाते, बैकफुट के ऊपर जो है वो डिफेंसिव भी प्ले कर चले जा रहे हो, वो डिफेंस भी नहीं करना आता हमें तो, बल्कि वो हमारे ऊपर अटैक करें तो हमें डिफेंस करना भी नहीं आता कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या हमारी बिलीव्स हैं और क्या हमारे जो है वो कन्विक्शन हैं, हमें डिफेंड करना भी नहीं आता अपने आप, क्योंकि इल्म नहीं है ना, जाहिल है हम लोग, बिल्कुल जाहिल दीनदार, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कैफ अखाफू, मैं क्यों डरूं, मा अशरक तुम वला तखाफू ना, हालांकि तुम नहीं डरते हो कि तुम अल्लाह के साथ जो शरीक ठहरा रहे हो इन चीजों को, और किस चीज को तुम शरीक ठहरा रहे हो जिसके लिए तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। देखें एक और अहम पॉइंट यहाँ पर, जी यहाँ पे खवातीन में एक मैसेज आया कि वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं गुनाह में तो हम पर चढ़ाई कर देते हैं, वी आर वीक इन नेकी, बिल्कुल ऐसी मामला है, हम अपनी नेकी में अपने दीन में बहुत वीक होते हैं, जबकि वो गुनाह में और अपने नफ्स परस्ती में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो हुब्बु दुनिया में बहुत बढ़े हुए होते हैं, शदीद होते हैं वो दुनिया की मोहब्बत में, जबकि हम अल्लाह की मोहब्बत में शदीद नहीं होते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, हम नहीं होते हैं, ना हमें अल्लाह से मोहब्बत, ना कुरान से मोहब्बत, ना नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, राइट, ना अल्लाह के हुक्मों से मोहब्बत, इसी वजह से वो हमारे ऊपर चढ़ते रहते हैं हर वक्त, अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, और हम जो है वो हर वक्त कॉम्प्रोमाइज, हर वक्त कॉम्प्रोमाइज, हर वक्त कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, क्योंकि हम जाहिल हैं, ना इल्म है, और ना जो है वो इल्म के नतीजे में जो मोहब्बत आनी थी वो मोहब्बत है हमारे अंदर, ये सारा का सारा मसला है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वाले आयत के अंदर कि इन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और इसको अल्लाह ताला ने अपने कुरान में किस लफ्ज से नकल किया, सुल्तान, सुल्तान क्या चीज होती है, बिल्कुल सुल्तान किसको कहते हैं? सुल्तान का असल मतलब जो है ना वो ताकत होता है, ताकत, ठीक है, ताकत, फिजिकल माइट, ठीक है। तो इसी वजह से जिसके पास ताकत होती है ना वो सुल्तान बनता है। कौन सी ताकत? मिलिट्री पावर होती है, पुलिस की पावर होती है, असलहा होता है उसके पास, तो वो लीडर बन जाता है, ठीक है। यानी जिसको पॉलिटिकल अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। वरना तो पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए फिर सुल्तान का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया, हालांकि इसका असल मतलब जो है ना वो होता है ताकत, ठीक है। यहां पर फिजिकल ताकत की बात नहीं हो रही, यहां पर किस ताकत की बात हो रही? यहां पर इंटेलेक्चुअल ताकत की बात हो, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अकली दलील ये भी ताकत है, अकली दलील भी ताकत है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी ये मशहूर है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ठीक है। वी एक्चुअली डू नॉट कंप्लीटली एग्री विद दैट कि नॉलेज इज पावर, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे दीन के अंदर, चाहे वेस्ट में हो चाहे ईस्ट में हो, जिसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न वाला मसला है अपनी, यहाँ तो दीन की बात हो रही, हमारा दीन सिखाता है कि नॉलेज ब्रिंग्स अबाउट ह्यूमिलिटी, राइट, ह्यूमिलिटी। अपनी हकीकत इंसान को समझ में आती है कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, मैं तो कितना बुरा हूं, मैं तो कितना बेकार किस्म की चीज हूं, ये असल नॉलेज होती है, ठीक है। तो नॉलेज ये एक एस्पेक्ट है नॉलेज का, कि इससे तो ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस आती है इंसान के। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बात हो, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि जो अल्लाह ताला के हुकूक को, अल्लाह ताला के राइट्स को जो है जो अब्यूज कर रहे हैं, या जो अल्लाह ताला के हुकूक मार रहे हैं, उनके सामने केस प्रेजेंट करना, उनकी खैरख्वाही करना, उनको शिर्क के नुकसान से बचाना, यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के लिए नॉलेज का जो इस्तेमाल है वो आपको पावर देता है, आपको सुल्तान देता है, ठीक है। आप अपना केस अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं व्हेन यू हैव नॉलेज, ठीक है, यानी आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तब आप ये काम कर सकते हैं, वरना आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, तुम्हारे ऊपर तो कोई नॉलेज नाजिल ही नहीं हुई, कोई दलील ही नहीं है तुम्हारे पास कि ये अल्लाह ताला के पार्टनर्स हैं। किसने तुम्हें बताया कौन सच्चा इंसान था, कौन सादिक था, कौन अमीन था, कि जिसने तुम्हें आके बताया कि ये बुत जो है ना ये अल्लाह ताला का पार्टनर है, और ये सितारे अल्लाह के पार्टनर हैं, ये चांद अल्लाह का पार्टनर है, या कौन सी साइंटिफिक दलील है तुम्हारे पास कि ये अल्लाह ताला के पार्टनर है, ठीक है। हमारे पास क्या दलील है? हमारे पास सिद्क और अमानतदारी की दलील है, कि जो अल्लाह के अंबिया, जितने अल्लाह के अंबिया थे सारे सादिक थे, सारे अमीन थे, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो दलील के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके सिद्क और अमानतदारी पे तो उनके दुश्मन वो भी जो है वो गवाही देते हैं कि हाँ ये सच्चाई और दयानतदारी में इनका जवाब नहीं है, इनका कोई कोई डाउट नहीं हो सकता इनकी सच्चाई और दयानतदारी में। तो ये होती है दलील, जिसका कि अगला बंदा भी इनकार ना कर सके। और ये दलील जो होती है ना ये ताकत होती है, ये सुल्तान होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास तो कोई सुल्तान ही नहीं, तुम्हारे पास तो कोई दलील ही नहीं। तो सुल्तान डजंट नेसेसरली हैव टू बी फिजिकल पावर, मिलिट्री पावर, नो, इवन इंटेलेक्चुअल पावर भी सुल्तान कहलाती है, ठीक है। और जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती, यानी इल्म नहीं होता, तो वो फिर कमजोर होता है, वो फिर दूसरों से दबता है बजाय इसके कि दूसरों को समझाए अच्छी तरीके से, ठीक है। अय्युल फरीकैनि, बस दोनों फरीकों में से, दोनों पार्टीज में से कौन सा वाला, अय्यु, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा अहक्कु, ज्यादा हकदार है बिल अमन, सेफ्टी का हकदार कौन है इन दोनों पार्टीज में से, ठीक है। यानी एक पार्टी वो मैं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बात कर रहे हैं कि क्या मैं सेफ्टी का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मेरे लिए, या तुम्हारे लिए सेफ्टी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तुम मुझे डरा रहे हो किन चीजों से? बुतों से डरा रहे हो, हालांकि तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि बुत कर कुछ नहीं सकता, ठीक है। तुम मुझे डरा रहे हो सूरज चांद सितारों से, हालांकि तुम्हें भी पता है कि सूरज चांद सितारे जो है ना वो अपने मदार पे चल रहे हैं, वो उससे आगे पीछे कुछ कर ही नहीं सकते। तुम मुझे उनसे डरा रहे हो। मैं तुम्हें किससे डरा रहा हूं? मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं। मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं, ठीक है? तो विच वन मेक्स मोर सेंस, मुझे डरना चाहिए कि तुम्हें डरना चाहिए? राइट, मुझे डरना चाहिए कि तुम्हें डरना चाहिए? अल्लाह जो है वो कुछ कर सकता है कि ये सूरज चांद सितारे और बुध कुछ कर सकते हैं? ठीक है, जो बनाने वाला है वो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर बनाने वाले का फायदा क्या? फिर रहने दो भैया ऐसे बनाने वाले को, अगर वो कुछ कर ही नहीं सकता तो। अय्युल फरीकैन अहक्कु बिल अमन, आई हैव मोर क्लेम टू सेफ्टी देन यू माई फ्रेंड्स, राइट? आई हैव मोर क्लेम टू सेफ्टी देन यू इन कुंतुम तालमून। लेकिन ये तुम्हें बात कब समझ में आएगी? जब तुम इल्म हासिल करोगे और समझोगे भी। जैसे क्लास में बैठे हुए इल्म तो हासिल कर रहे हो लेकिन समझ में भी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए नोट्स बनाओगे, उसके लिए फिर तकरार करोगे, रिपीटेशन करोगे, तब तुम्हें समझ में भी आएगा जो 1 घंटे की क्लास में सुना, ठीक है? तो इन कुन तुम तालमून, जब तुम समझोगे अपने इल्म को, जब भी हजरत शेख हुसैन रहमतुल्लाह ने यहाँ पे तर्जुमे में तालमून का तर्जुमा समझ से किया, क्या मतलब? खाली जो है ना वो क्लास में बैठ जाना या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सुन लेना लेकिन समझना कुछ भी नहीं, ये इल्म नहीं होता, ये इल्म नहीं होता। हाँ, स्कूल कॉलेज के अंदर तो इसको इल्म कहलाएगा कि भाई रट्टा मार करके जो है वो क्या सेव माई एग्जाम्स डॉट कॉम है ना, वो GCSE के एग्जाम्स के अंदर सेव माई एग्जाम्स डॉट कॉम, उसमें पास पेपर हल कर लो, फलानी चीज याद कर लो, फलानी चीज जो है वो ऐसे सॉल्व करना सीख लो, और फिर जाकर के पेपर मिला कर लिख करके आ जाओ, तुम्हें A स्टार मिल जाएगा। उनके यहाँ ये इल्म है, हमारे यहाँ ये इल्म नहीं है, हमारे यहाँ ये इल्म नहीं है। हमारे यहाँ इल्म जो है वो तो फकाहत होती है, समझ, और जिसको समझ हासिल नहीं उसको इन फैक्ट और फिगर से उल्टा नुकसान ही होता है, ठीक है? तो ये हो गया तर्जुमा। अब खुलासे तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं जो कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह की है, और ये जो खुलासे तफसीर है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, इसमें हजरत थानवी रहमतुल्लाह की यानी हकीमुल उम्मत होना जो है वो ऐसे खुल के सामने आता है इन आयात के खुला के की तफसीर के अंदर। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा? आज के जमाने में अगर हम इसी तरह दलील पेश करें कि फला शेख जैसे तुम भी सच्चा सादिक और अमीन मान, जिसे तुम भी सच्चा सादिक और अमीन मानते हो, वो ये कह रहे हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? जैसे हजरत जी रहमतुल्लाह का हवाला देना। बिल्कुल, जो हजरत जी को मानते हैं नेक परहेजगार, तो हजरत जी वाली दलील पेश करें ना उनके सामने, जो नहीं मानते उनके सामने मत पेश कर दीजिएगा, वो कहेंगे तुम तो वही पीर परस्त। वो आगे से जवाब देंगे, तुम तो वही पीर परस्त, तो वो तो नहीं मानेंगे। लेकिन जो मानते हैं उनके सामने हजरत जी की बात पेश करो, जो हजरत जी को नहीं मानते अल्लाह के नबी को मानते हैं उनके सामने अल्लाह के नबी की बात पेश करो, जो कुरान मजीद को मानते हैं उनके सामने कुरान मजीद की बात पेश करो, ठीक है? यही तो तरीका है दावत तबलीग करने का, ठीक है? तो बेवकूफी होती है, उनको परस्ती का मतलब ही समझ में नहीं आता, इस वजह से उल्टी थी बस थ्रो अराउंड करते रहते हैं ट्रांस को, पीर परस्त, तो शख्सियत परस्त, तो ये परस्त, तो वो परस्त। यानी आप यकीन करें, पीपल रियली मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं, ठीक है? हमें लफ्ज का भी मतलब पता नहीं होता, हम उस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने आप को प्रूव करने के। खैर, खुलासे तफसीर में जो कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बयान और कुरान तफसीर से हजरत ने यहाँ पे लिया है, तो उसमें फरमाते हैं अंडरलाइन जो होता है वो तर्जुमा होता है, और ब्रैकेट्स के अंदर तफसीरी कोई नुकता होता है। तो फरमाते हैं कि वो, और वो वक्त भी याद करने के काबिज है जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने, यहाँ पे और कोई मदद ने जरूरत नहीं समझी तफसीर बयान करने की, तो बस इब्राहिम के साथ जो है वो अलैहि सलाम तफसीरन लगा दिया, ठीक है? यानी बस वो, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बाप आजर, तो आजर जो था ये नाम था, ये तफसीरन लिख दिया है, बहुत मुख्तसर तफसीर है ना ये वाली तफसीर, से फरमाया कि क्या तू बुतों को माबूद करार देता है? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को जो इस एतकाद में तेरे शरीक है, यानी तुम और तुम्हारी कौम, हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तो उसी कौम का हिस्सा थे, अगर आप बायोलॉजिकली देखें या अगर आप सोशली देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही तो वो कौम थी, ठीक ठीक है, वो भी उसी कौम, लेकिन अकीदे से असल कौम बनती है। और ये जो फैमिली टर्म्स होते हैं ये भी कौम बनती है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है, इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौमियत जो है वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर होती है। आगे मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने फिर उसको हमारे दौर पे भी अप्लाई करके बात करी है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उससे। तो फरमाया कि मैं तुमको और तुम्हारी कौम, सारी कौम को जो इस एतकाद में तुम्हारे साथ शरीक हैं, सरीह गलती में देख रहा हूं, ठीक है, फी ज़लालिम मुबीन, बिल्कुल खुली साफ सीधी इजी टू अंडरस्टैंड गलती के अंदर मैं देख रहा हूं। और फिर आगे जो है वो आगे तफसीरें लिखते हैं कि और सितारों के मुतालिक आगे गुफ्तगू आएगी, दरमियान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सेहत नजर के साथ मौसूफ होना कि मा कबल व मा बाद दोनों से इसका ताल्लुक है फरमाते हैं। ये जाहिर तो मुश्किल उर्दू भी है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तफसीर लिखी कि ये जो उन्होंने कहा ना, मैं तो सरी गलती में देख रहा हूं, और फिर आगे सूरज चांद सितारों के बारे में भी जो उन्होंने अपनी बात पेश करी, तो ये क्या बताता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये सब कुछ, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेहते नजर के साथ मौसूफ थे। सेहते नजर के साथ क्या मतलब? अंग्रेजी में एक छोटी सी कोई टर्म आप जरा बता दें कोई, अगर तो बहुत खुशी होगी। सेहते नजर के साथ मौसूफ होना को अगर दो अंग्रेजी के अल्फाज से एक्सप्लेन कर दें, हम इंग्लू स्पीकर्स के लिए, इंग्लिश प्लस उर्दू इंग्लू, माशाल्लाह, ठीक है, क्लियर थिंकिंग, क्लियरिटी ऑफ थॉट, या जिसको आप सेल्फ क्लियरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस तो इतना नहीं, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन वाला मसला फिर आ जाता है ना, विजनरी भी नहीं, विजनरी भी इतना नहीं कह सकते, ट्रांसपेरेंट भी इतना नहीं कह सकते इसको, लेकिन साफ सीधे अल्फाज होते हैं, सेल्फ क्लियरिटी यानी खुद आप क्लियर हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। होता है ना कि जब हम क्लियर नहीं होते और हम किसी बात को जो है वो आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम वी एंड अप डूइंग व्हाट, हम कहते हैं बच्चों को, हम कहते हैं बोंगियां मारना, आई बाई शाई करना, ठीक है, तो फिर जब हम खुद क्लियर नहीं होते ना, और फिर हम खड़े हो जाते हैं कोई चीज पढ़ाने के लिए, तो फिर हम बोंगियां मारना शुरू कर देते हैं, इधर की उधर की इधर, हमें खुद भी समझ में आ रहा होता है कि अगले बंदे को क्या खाक समझ में आएगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूं, साफ पता चल जाता है टीचर को कि वो बोंगियां मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन इल्म नहीं हासिल किया होता, समझा नहीं होता, तो फिर मारनी पड़ जाती है फिर बोंगियां, ठीक है। तो सेल्फ क्लेरिटी जो है ना, ये एसेंशियल है किसी को कोई बात समझाने के लिए, आप खुद क्लियर ना हो तो आप नहीं समझा सकते। इसी वजह से हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह बहुत फरमाया करते थे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है, अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ तुम अगले बंदे को कुछ नहीं समझा सकते। तो डू योर ओन होमवर्क फर्स्ट, डू योर ओन होमवर्क फर्स्ट, के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो हमने करनी नहीं है, इस वजह से हम अनक्लियर ही रहते हैं, मेहनत हम करना नहीं चाहते, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम दूसरे कामों के लिए खूब मेहनत करते हैं, आखिरत के लिए मेहनत हम करना नहीं चाहते, इस वजह से हम अनक्लियर रहते हैं, ठीक है, तौफीक अता फरमाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे, सेहत नजर यानी उनकी जो नजर थी ना, उनकी जो थॉट थी, यहाँ पे खाली फिजिकल नजर मुराद नहीं है, बल्कि उनकी जो विजन था वो बिल्कुल सेहतमंद विजन था, बिल्कुल क्लियर विजन था, 6x6 है ना, आई साइट 6x6 होती है ना, उनकी रूहानी आई साइट जो थी वो 6x6 थी, ये उनकी सिफत, ठीक है, कि पिछले वाले मामले में भी मा कबल यानी जो पीछे बुतों की बात हुई उसके बारे में भी वो बिल्कुल क्लियर थे, और आगे मा बाद जो सूरज चांद सितारे के बारे में बात हो रही है उसके बारे में भी वो बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने ऐसी ही कामिल तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन की मखलूकात बचश्मे मारिफत दिखला, ठीक है, जमीन और आसमान की मखलूकात, वकदालिक नुरी इब्राहिमा मलकूत अस्समावाति वल अर्द, ठीक है, हमने दिखाई इब्राहिम, अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने दिखाई, और अगर आइजैक न्यूटन या उसका तो नाम ही मैं हर बार भूल जाता हूँ, अभी जो हॉपकिंस, क्या नाम था उसका, एंथनी हॉपकिंस का, वो तो कोई एक्टर था शायद, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस राइट। तो स्टीफन हॉकिंस को जो अगर कुछ कॉस्मोलॉजी के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो चीजें मिली, तो वो उसको अल्लाह ने नहीं दिखलाई क्या? क्या वो उसने खुद ही देखी थी? अल्लाह ने नहीं दिखाई उसको, न्यूटन को अल्लाह ने नहीं दिखाई, उसने खुद ही देख ली? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिखाई? नहीं, जो भी देखता है उसको अल्लाह ही दिखलाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है मामला, कि बंदा अपनी तरफ से जिस चीज के ऊपर कोशिश करता है ना, अब अल्लाह आगे से वो चीज उसको समझा देते हैं, उसको दिखा देते हैं। ये अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें और भी तफसील है ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन आसान सादा सी ये है कि ये नहीं कि सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बैठे बैठाई दिखला दी सारी चीजें, नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से जो करना था वो किया, ठीक है, अल्लाह ताला को राजी किया, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की, अल्लाह ताला की अताअत करी, अल्लाह ताला ने उनको इनाम अता फरमाया कि मलकूत समावाती वल अर्द उनके सामने खोल दिए। अब अल्लाह ताला ने उनसे काम भी लेना था, किसी को ज्यादा बताते हैं, किसी को कम बताते हैं, किसी को टीचर के पोजीशन पे बिठाना होता है अल्लाह ताला ने, तो टीचर को जो है वो जिस अमाउंट ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है उतनी देंगे ना आप उसको, और किसी ने जो है वो बस जो है वो ऐसी पार्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा काम करना होता है, उसने कोई टीचर वीचर नहीं बनना है, तो उसको जो है वो थोड़ी सी नॉलेज सिखा दी जाती है ना, बस तुम्हारे लिए इतना काफी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो यानी इंसानियत का टीचर बनना था, है ना, सारे जो वो हैं अहलुल किताब, यहूद, नसारा, अब्राहमिक रिलीजन्स, तीनों के तीनों, उन सब का बड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनना था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज्यादा चीजें दिखलाई, ठीक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि अच्छा उनको दिखला दी थी तो उनका क्या कमाल है इसके अंदर, भाई उन्होंने अपनी एफर्ट करी, अल्लाह ने उनको दिखाई, और अल्लाह की मर्जी भी तो होती है ना, अल्लाह के तकदीर है, अल्लाह ताला के फैसले हैं, किसी को टीचर बनाना है, किसी को नबी बनाना है, किसी को जो है वो बड़ा बनाना है, किसी को नहीं बनाना है, तो अल्लाह इज द वन हु कॉल्स द शॉट, नॉट अस, राइट। द वन हु मेड द बोर्ड गेम्स इज गोइंग टू डिफाइन वॉट इज गोइंग टू डू, नॉट समवन हु इज जस्ट प्लेइंग द बोर्ड गेम, ही इज नॉट गोइंग टू डिफाइन द रूल्स, इज ही और इज शी, ठीक है। कॉमन सेंस की ये तो बात है बिल्कुल ही। तो हमने दिखाए, ठीक है, तो हमने उनको अज दयार मारफत से, यानी अपने मारफत के जो जो दयार हैं, जो वहां से उनको, यानी सॉरी, हमने उनको बचश्मे मारफत दिखलाई, ठीक है, यानी उनको ऐसा नहीं करना पड़ा कि उनको जो है वो लैब्स में जाना पड़ा, उनको जो है वो नॉर्थ पोल जा करके जो है वो वहां पे अपने जिंदगी के कीमती लम्हात नॉर्थ पोल में गुजारने पड़े, या उनको जो है वो समंदर की तह में जाना पड़ा इन चीजों को सीखने के लिए, या उनको जो है वो कोई अपनी लैब बनानी पड़ी वहां पे जाके, लेकिन उसके बगैर हमने उनको ये सारी चीजें सिखला दी, ठीक है। हमारे पास सारा इल्म है, हम जिसको चाहें जैसे चाहें सिखला दें, ठीक है। तो बेसिकली हमें आसान अल्फाज में इस है ना मलकूत तो समावाती वाला अजायब से कल बात हुई थी, तो इसका तर्जुमा किया था, लेकिन इसको हम जो है ना वो फिर, क्योंकि आगे भी बात आ रही है इससे रिलेटेड, आगे इससे रिलेटेड एक बात आ रही है, इस वजह से इसको हम साइंस की नॉलेज भी कह सकते, साइंस की नॉलेज, क्योंकि साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन, राइट। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो हम करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं वो तो फिर आगे से आते हैं ना, यानी अल्लाह देता है कि बात समझ में भी आती है ऑब्जर्व करने के बाद, वरना ऑब्जर्व तो कोई भी बैठ कर करना शुरू कर दे, उसको क्या बात समझ में आ जाएगी? नहीं, जिसको अल्लाह समझाता है उसको उसको डिटेल समझाता है, उसको उसकी तफसील समझ में आती है, लेकिन है ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऑब्जर्व तो किया, उनके पास टूल्स नहीं थे, उनके पास टेक्निक्स नहीं थे, उस जमाने में नहीं होते होंगे, या होते भी होंगे तो हमें पता नहीं कि होते थे कि नहीं होते थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको हकीकतें समझा दी इन सारी चीजों की, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन की मखलूकात बचश्म मारिफत दिखला दी, ये थानवी रहमतुल्लाह ने भाई कोई फिजिकल माइक्रोस्कोप यूज करके नेसेसरीली उन्होंने नहीं हासिल किया, बल्कि हमने उनकी रूह के मारिफत को जो है वो खोल दिया और उनको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई, ताकि वो खालिक की जात और सिफात के आरिफ हो जाए। ठीक है, देखें साइंसदान इवन आज के जमाने में भी ये क्यों एथियज्म जो है वो क्यों रीडिफाइन हो गया आज के जमाने में। पहले एथियज्म था कि देर इज नो गॉड, देर इज नो गॉड, राइट, सब नेचुरल सिलेक्शन है और जो है वो थ्योरी, वो डार्विन थ्योरी है और खुद ब खुद सब कुछ हो गया। अब जो है वो साइंसदान ये नहीं कहते कि देर इज नो गॉड। क्यों भाई? क्योंकि उनको भी जो अल्लाह ताला ने, इन्होंने जाहिर है अपनी लैब्स बनाई, अपने लगे रहते हैं सारी जिंदगी, दिन रात लगे रहते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर और एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। अल्लाह ताला ने इनके सामने जो तफसीलात खोली है ना, ये तफसीलात खोलने से इनको भी यकीन हो गया इस बात का कि ये सारी चीजें खुद से हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है कि ये सब कुछ खुद से हो। गोया के एक दर्जा उस मारिफत का जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली थी, वही आज के साइंसदान को भी मिली है, आज के साइंसदान को भी मिली है। लेकिन फर्क क्या है? इब्राहिम एडमिटेड टू इट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबमिटेड टू इट, और ये जो काफिर साइंसदान है ये अपनी तकबर की वजह से, अनानियत की वजह से, जिद की वजह से, या दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से कि वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएंगी, ये एडमिट नहीं करते इस बात को, ये मुसलमान नहीं होते। हालांकि इनको पता है कुरान मजीद के अंदर ये चीजें जो मौजूद हैं ये साइंटिफिकली सब प्रोवन हो चुकी हैं, तकरीबन सब प्रोवन हो चुकी हैं, लेकिन एडमिट नहीं करते क्योंकि जिद, अनानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर जिद और अनानियत नहीं थी। ठीक है, तो उनको फिर यकीन हासिल हो गया, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। ठीक है, वो यकीन करने वालों में से हो गए। आगे सितारों के मुतालिक गुफ्तगू के ततिम्मा मनाजरे का है, मजकूर है कि ऊपर की गुफ्तगू तो बुतों के मुतालिक हो चुकी थी ना, तो ये फिर हम कल की क्लास पर रखें, किसी को कोई सवाल वगैरह अगर पूछना हो तो जो बात होगी उसके लिए। ये जो मलुकूत और समावाती और अर्थ का मामला है ना, तो हमें क्या करना है इसके अंदर ना, हमें भी अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और तवज्जो से अल्लाह ताला की मखलूक को देखना है। नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम अपने अल्लाह को राजी कर सकें, अल्लाह को खुश कर सकें, जिसने हमें सारी नेमतें अता फरमाई हैं, उसका इतना तो हक बनता है ना कि हम उसको खुश करें। राइट, क्या ख्याल है? अम्मा अब्बा जो है वो आपको अच्छे नेमतें दें, अच्छी जो है वो खाना खिलाएं, अच्छे से रखें, सब कुछ करें, और आप उनको नाराज करते रहें, क्या ये गलत बात, क्या ये सही बात है कि गलत बात है? आप उनको गालियां देते रहें, आप उनको जो है वो उल्टे सीधे कमेंट्स देते रहें, आप उनकी हर बात को जो उल्टा करते रहें, हालांकि इतनी नेमतें आपको अम्मा अब्बा के वास्ते से मिली हुई हैं। तो व्हाट इज गुड ह्यूमैनिटी, व्हाट इज गुड अखलाक, कि आप उनको खुश करने की मेहनत में लगे ना, कोशिश में लगे ना। तो अल्लाह ताला तो माँ बाप से 70 गुना से भी ज्यादा बढ़ करके, कि अल्लाह ताला ने तो माँ बाप के वास्ते से पहुंचाया जो कि हमें पहुंचाया है, या माँ बाप के अलावा भी हजारों वास्तों से अल्लाह ताला ने हमें नेमतें पहुंचाई, तो क्या ये गलत बात है कि हम अल्लाह ताला की रजा के लिए जो है वो फिक्रमंद रहे, हमारी नीयत रहे कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे हैं? ये तो ऐन इंसानियत है ना, ये तो ऐन अखलाक है, ये तो ऐन मैनरिज्म्स है, असल मैनरिज्म्स तो यही है ना। बाकी जो कहे कि नहीं आए, क्यों अल्लाह की मैं रजा की फिक्र करूं, तो भाई वो तो एक गंदा इंसान है, वो तो एक घटिया किस्म का इंसान है। ठीक है, जिसका खाते हो उसके तुम फिक्र करने के बजाय, जिसका तुम कुछ भी नहीं खाते हो, जिसका तुम जिससे तुम्हें कोई जो है वो फायदे की चीज नहीं मिल रही है, तुम उसकी फिक्र में हर वक्त पड़े रहते हो, इट मीन्स यू आर एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड, दैट्स व्हाट यू आर, राइट? ठीक है, तो हमारा काम है कि हम इल्म हासिल करें आंखों के जरिए से, कानों के जरिए से, ये भी अल्लाह की ही दी हुई नेमतें हैं, और हम तवज्जो के साथ आंख कान खोल करके तवज्जो के साथ इल्म हासिल करें, और फिर नीयत भी हमारी अल्लाह की, तब पिक्चर कंप्लीट होगी और फिर हमें भी जो है ना ये यकीन हासिल होगा, मारिफत हासिल होगी, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। ठीक है, पे अटेंशन करते हैं। सही। फिर यहाँ पर हम आज की क्लास रोक देते हैं। बहुत ही अहम और बड़ी दिलचस्प किस्म की जो गुफ्तगू है वो इसके बाद आ रही है, और अल्लाह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को हमारी तरफ से जजाय खैर अता फरमाए। क्या उन्होंने नुक्ता बयान किया, अल्लाह कबीरा। ठीक है, बताने की तौफीक से इंशाल्लाह हम कल की क्लास में उसको पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।